इस्लामी क्रांति और समाज।
श्रोताओं, कार्यक्रम इस्लामिक क्रांति और समाज की अंतिम कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं। आज की कड़ी में हम पिछले कार्यक्रमों का सारांश बयान करेंगे। मरियम मेहरदादी और हसन अब्बास का सलाम स्वीकार कीजिए।
दुनिया की क्रांतियों के बारे में जो विचारधाराएं पाई जाती हैं, उन पर ईरान की इस्लामिक क्रांति ने दो रूपों में प्रभाव डाला है। ईरान की इस्लामिक क्रांति का एक प्रभाव यह है कि उसने क्रांतियों के बारे में कुछ विचारकों के दृष्टिकोणों को संतुलित किया है, जबकि इसका दूसरा प्रभाव यह है कि इस क्रांति ने यह सिद्ध कर दिया है कि सांस्कृतिक कारणों से भी क्रांति आ सकती है। रोचक बात यह है कि ईरान की इस्लामिक क्रांति से पहले तक विचारक ये समझते थे कि क्रांतियों का मुख्य कारण आर्थिक समस्याएं होती हैं।
थेडा स्कोपोल उन प्रसिद्ध विचारकों में से एक हैं जिन्हें ईरान की इस्लामिक क्रांति ने बहुत प्रभावित किया है और स्वयं उन्होंने इस बात को स्वीकार भी किया है। ईरान की इस्लामिक क्रांति आने से पहले थेडा स्कोपोल का मानना था कि आमतौर पर क्रांतियाँ आर्थिक कारणों से होती हैं, और साथ ही वे बल देकर कहती हैं कि क्रांतियां गैर इरादी होती हैं, यानी कोई जानबूझकर क्रांति नहीं लाता, बल्कि हालात ऐसे हो जाते हैं जिनकी वजह से क्रांतियां आ जाती हैं। परंतु ईरान की इस्लामिक क्रांति ने क्रांतियों के बारे में स्कोपोल के दृष्टिकोण को संतुलित कर दिया, और साथ ही उन्होंने कहा कि ईरान की इस्लामिक क्रांति सोच समझ कर और जानकारी के साथ आई थी। थेडा स्कोपोल ने ईरान में इस्लामिक क्रांति और शिया इस्लाम के संबंध में लिखे गए अपने एक लेख में स्वीकार किया है कि ईरान की इस्लामिक क्रांति के संबंध में हमारे दृष्टिकोण कुछ आयामों से सही नहीं उतर रहे हैं, और उसे वो अपने कानून व सिद्धांत के विरुद्ध मानती थीं। वो इस बारे में कहती हैं, ईरान की इस्लामिक क्रांति कुछ आयामों से हमारे लिए कानून के विरुद्ध एक असामान्य चीज़ है। निसंदेह ये क्रांति एक प्रकार की सामाजिक क्रांति है, परंतु इस क्रांति का विशेषकर उन घटनाओं के मध्य आना जो शाह की सरकार के अंत का कारण बनी, उन भविष्यवाणियों की चुनौती का कारण बनी जिन्हें मैंने फ्रांस, रूस और चीन की क्रांतियों की समीक्षा के दौरान पेश किया था।
थेडा स्कोपोल ईरान की इस्लामिक क्रांति में शिया धर्म और नेतृत्व की भूमिका पर विशेष ध्यान देती हैं, और फ्रांस, रूस और चीन की क्रांति के संबंध में अपने पहले वाले दृष्टिकोण के खिलाफ वो ये मानने लगे कि ये क्रांति ज़बरदस्ती नहीं आई, बल्कि ये क्रांति लोगों और नेताओं की जानकारी व जागरूकता से आई। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर इतिहास में कोई क्रांति जानकारी व जागरूकता से आई है तो वो ईरान की इस्लामिक क्रांति है। ईरान की इस्लामिक क्रांति का एक महत्वपूर्ण प्रभाव यह है कि उसने ये सिद्ध कर दिया कि सांस्कृतिक कारणों से भी क्रांति आ सकती है, और इस्लामिक क्रांति से प्रभावित बहुत से विचारकों ने ईरान की इस्लामिक क्रांति सहित दूसरी क्रांतियों के अस्तित्व में आने में धर्म और संस्कृति की विशेषताओं को महत्वपूर्ण बताया है।
माइकल फोको एक सांस्कृतिक विचारक हैं। उन्होंने ईरान की इस्लामिक क्रांति पर विशेष ध्यान दिया है, और ईरान की इस्लामिक क्रांति के अस्तित्व में आने में संस्कृति एवं धर्म की जो भूमिका रही है उसकी उन्होंने समीक्षा की है। माइकल फोको के अनुसार ईरान की इस्लामिक क्रांति वर्तमान समय की पहली क्रांति, या उनके शब्दों में राजशाही व्यवस्था के खिलाफ पहला सबसे बड़ा विद्रोह और यथासंभव स्थिति में आधुनिकतम आंदोलन है। फुको बल देकर कहते हैं कि ईरान की इस्लामिक क्रांति को आर्थिक व भौतिक क्रांति का नाम नहीं दिया जा सकता, क्योंकि पहली सरकार की आर्थिक कठिनाइयां व समस्याएं इतनी बड़ी नहीं थीं कि लोग उसकी वजह से आंदोलन करते। इस प्रकार फुको का मानना है कि धार्मिक आस्थाओं के अलावा कोई भी दूसरी चीज़ ईरान के लोगों को इस सीमा तक एकजुट नहीं कर सकती थी। उनका मानना है कि ईरान के लोग शिया और इस्लाम के साथ ऐसी शक्ति उत्पन्न करते थे जिसने विभिन्न प्रकार के हथियारों से लैस शाही सरकार को धराशायी कर दिया।
फोको ईरान की इस्लामिक क्रांति में नेतृत्व के विषय पर विशेष ध्यान देते हैं। वो ईरान की इस्लामिक क्रांति के मार्गदर्शन में अपने एक लेख में स्वर्गीय इमाम खुमैनी की रचनात्मक भूमिका पर प्रकाश डालते हैं। वे स्वर्गीय इमाम खुमैनी को पेरिस के पवित्र बूढ़े इंसान की संज्ञा देते हैं। उनका मानना है कि ईरान के हर वर्ग के लोग उनसे प्रेम करते और श्रद्धा रखते हैं। इसी प्रकार फोको स्वर्गीय इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में लिखते हैं, इमाम खुमैनी एक महान व मिथक व्यक्तित्व के स्वामी थे, क्योंकि किसी भी सरकार का प्रमुख और कोई भी राजनीतिक नेता ये दावा नहीं कर सकता कि उसके लोग उससे इस प्रकार का संबंध व श्रद्धा रखते हैं, चाहे उसे समस्त संचार माध्यमों का समर्थन ही क्यों न प्राप्त हो।
एक अन्य विचारक निकी केडी हैं, जिन्हें भी ईरान की इस्लामिक क्रांति ने प्रभावित किया है। उनका मानना है कि राजशाही सरकार के खिलाफ लोगों को खड़ा करने और आंदोलन में धर्मगुरुओं और संगठनों की उल्लेखनीय भूमिका है। उनका मानना है कि इसकी वजह भी शिया धर्म और उसकी आस्थाएं व शिक्षाएं हैं, और उसकी तुलना दूसरे इस्लामी संप्रदायों से नहीं की जा सकती। वो ईरान के इतिहास में विद्वानों और धर्मगुरुओं की भूमिका को बहुत महत्वपूर्ण मानती और लिखती हैं कि अगर प्रथम श्रेणी का एक धर्मगुरु व मुज्तहिद ये कह देता था कि सरकार की अमुक नीति बदलनी चाहिए या अमुक शासक बुरा कार्य कर रहा है, तो उसका अनुसरण करने वाले उसकी बात मानते थे, न कि केंद्रीय सरकार की।
हमीद अलगार भी ब्रिटेन के विचारक हैं और उन्होंने भी ईरान की इस्लामिक क्रांति की समीक्षा में धार्मिक दृष्टि डाली है और इस क्रांति की जड़ों को धर्म में मानते हैं। हमीद अलगार इस सीमा तक ईरान की इस्लामी क्रांति से प्रभावित हैं कि उन्होंने अपने डॉक्टरेट के थीसिस में स्वीकार किया है कि ये एक किताब है। अलबत्ता अगर इसे अब लिखना होता तो शायद मैं बहुत सी बातों को बदल देता। ये ब्रिटेन के प्रसिद्ध विचारक ईरान की इस्लामिक क्रांति के आधारों के बारे में कहते हैं कि क्रांति का आधार शिया धर्म है। इस दुनिया में बुराई और अत्याचार सदैव भलाई एवं न्याय के खिलाफ काम करते हैं और मुसलमानों को चाहिए कि न्याय को व्यवहारिक बनाने के लिए काम करें।
वास्तव में हामिद अलगार का मानना है कि ईरान के लोगों ने इससे पहले कि वे केवल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर किए गए अत्याचार पर रोएं, अत्याचार के मुकाबले में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शिक्षाओं से प्रेरणा ली थी और इसी वजह से वे ईरान की शाही सरकार के मुकाबले में उठ खड़े हुए।
आयरलैंड के एक विचारक फ्रेड हेलिडे हैं जो ईरान की इस्लामिक क्रांति को इतिहास की सबसे आधुनिक क्रांति मानते हैं और अपने दृष्टिकोण के पक्ष में कुछ प्रमाण लाते हैं। फ्रेड कहते हैं कि आयतुल्लाह इमाम खुमैनी ने अपनी धार्मिक बातों से धार्मिक और राष्ट्रवादी लोगों को पहलवी सरकार के खिलाफ एक पंक्ति में कर दिया है। इसी तरह वो अपने दृष्टिकोण के पक्ष में कहते हैं कि ईरान के लोगों ने इतिहास का सबसे बड़ा जमावड़ा इमाम खुमैनी के स्वागत में किया था। इसी तरह वो कहते हैं कि इस्लामिक क्रांति के बाद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इस सीमा तक है कि दुनिया की किसी भी क्रांतिकारी सरकार में नहीं है।
अमेरिका में रहने वाले एक ईरानी विचारक अली मीर सिपासी हैं। वे ईरान में सेक्युलरवाद की विफलता की समीक्षा करते हैं। उनका मानना है कि सेक्युलरवाद का ईरान में न केवल स्वागत नहीं हुआ बल्कि ईरानी लोगों ने उसे नकार दिया और बंद गली का उसे सामना करना पड़ा। सेक्युलरवाद को ईरान में बंद गली का सामना क्यों हुआ? इस प्रश्न के उत्तर में मीर सिपासी कहते हैं कि इस्लाम के मुकाबले में सेक्युलरवाद की बातें कमज़ोर थीं और संगठनों और नेताओं ने इस अवसर का लाभ उठाया और उन्होंने ईरान के अप्रसन्न लोगों को शाह के खिलाफ खड़ा कर दिया। इसी प्रकार वे कहते हैं कि एक राजनीतिक आइडियोलॉजी वाले आंदोलन के दिशा निर्देशन का संबंध इमामत, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की गैबत और उसके राजनीतिक परिणाम व आस्था से है।
वॉशिंगटन के जॉर्ज टाउन विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर और अमरीकी विचारक जॉन एस्पोसिटो हैं। उन्होंने ईरान की इस्लामिक क्रांति के बारे में कई लेख लिखे हैं। वे स्पष्ट शब्दों में इस विषय की ओर संकेत करते हैं कि ईरान की इस्लामिक क्रांति और शाह से संघर्ष का स्रोत शिया धर्म और उसकी शिक्षाएं हैं। वो इस संबंध में लिखते हैं कि ईरान की इस्लामिक क्रांति की आइडियोलॉजी ईरानी और शिया थी। सन 680 ईस्वी शताब्दी में अधिग्रहणकारी खलीफा यजीद द्वारा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद किए जाने को ईरान की इस्लामिक क्रांति के लिए एक चिंगारी समझा जाता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ऐतिहासिक महा आंदोलन से अन्याय और अत्याचारियों के खिलाफ उठ खड़े होने की प्रेरणा मिलती है। जॉन एस्पोसिटो ईरान की इस्लामिक क्रांति की पहचान के बारे में कहते हैं कि ईरान ने दुनिया के सामने पहली सफल इस्लामी क्रांति पेश की। वो कहते हैं कि इस क्रांति का आधार इस्लाम, इस्लामी नारे जैसे अल्लाह अकबर और धार्मिक एवं गैर धार्मिक नेतृत्व था। यह अमरीकी विचारक कहता है कि ईरान की इस्लामिक क्रांति धर्म के दिशा निर्देशन में आने वाली पहली क्रांति है।
एक अन्य विचारक माइकल फिशर हैं। वे ईरान की इस्लामिक क्रांति को धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से देखते हैं। वे इस क्रांति को करबला की घटना का एक सिलसिला मानते हैं। माइकल फिशर कहते हैं कि ईरान की इस्लामिक क्रांति में करबला की घटना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के विश्वास और उनकी आस्था के लिए संघर्ष करने का आधार बन गई। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला में शहीद हो गए और उनकी शहादत ने इंसानियत का असली रूप पेश किया और अपने आप से बेगाना हो चुके ईरानी लोगों को पहचान, सामाजिक एकता और नई शक्ति का आभास कराया। सेक्युलरवाद और उसके समर्थकों में इस्लाम एवं उसके पक्षधरों से मुकाबले की क्षमता नहीं थी, इसलिए उसे किनारे कर दिया गया और इस्लामिक क्रांति सफल हो गई।
फ्रांस में रहने वाली एक ईरानी विचारक लैला इश्की हैं। वो भी ईरान के इस्लामिक क्रांति का विश्लेषण करती हैं। वो कहती हैं कि ईरान की इस्लामिक क्रांति केवल एक ऐतिहासिक और एक समय के भीतर समाप्त हो जाने वाली घटना नहीं है, बल्कि वो बाकी रहने वाली घटना है। वो इसी दृष्टिकोण के आधार पर विभिन्न आयामों से ईरान की इस्लामिक क्रांति की समीक्षा करती हैं। लैला इश्की कहती हैं कि शियत ईरानी संस्कृति से जुड़ी हुई है और कभी भी ईरानियों ने शियत के खिलाफ कदम नहीं उठाया है, और अगर आंदोलन व प्रतिरोध भी किया है तो वो भी खिलाफत के विरुद्ध था, न कि शियत के।
प्रिय श्रोताओं, इस कार्यक्रम की अंतिम कड़ी यहीं पर समाप्त होती है। आशा है कि आपने ईरान की इस्लामिक क्रांति और उसके प्रभावों पर ध्यान दिया होगा।